स्मशानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण, आज सारी दुनिया ऐश करने वाली है। वो लोग सोचते हैं कि ये जीवन का ध्येय है। आज रात कोई सोएगा नहीं बाहर। पिछले कई सालों हम बाहर नगर संकीर्तन में जाया करते थे, लेकिन फिर बंद कर दिया, क्योंकि कितने सारे लोग शराब पीकर रास्ते में आते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, और हमारे भक्त बड़े मधुर ढंग से हरि नाम लेकर जाते हैं, और ये लोग भी मिल जाते हैं भक्तों के बीच में। फिर लोगों को लगता है कि ये भी सब हरे कृष्ण वाले हैं, शराब पीकर नाच रहे हैं। वो नहीं जानते कि हरे कृष्ण वाले जो हैं वो कोई अलग तरह का मादक द्रव्य का सेवन कर रहे हैं, और ये नशा एक ऐसी नशा है जो बहुत दिव्य है, अमृत के समान है। बाहर के जो मादक द्रव्य हैं उनकी तरह नहीं है। तो इस साल हर साल की तरह यहां मंदिर में सत्संग यहां भक्तगण आके मनाते हैं इस दिवस पर, ताकि भक्तों को बाहर कोई परेशानी ना हो, मन विचलित ना हो जाए। टेलीविजन पर भी कितने सारे कार्यक्रम दिखाते हैं, फिर टेलीविजन खोल के बैठ जाएं तो फिर मुसीबत हो जाएगी। वैसे लोग कहते हैं नया साल शुरू होने वाला है, लेकिन इस साल में नई बात क्या है? वही साल है। पिछले साल जो हुआ वो इस साल में भी होना है, इसके बाद में भी होना है। कोई नई बात नहीं है। हम लोग केवल एक दूसरे को गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, लेकिन सुबह में गुड अच्छी बात क्या होती है? वही चीज। हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, हैप्पी बर्थडे कहते हैं, हैप्पी या खुशी किस बात की है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, यही एक सत्य है इस जगत का। और जब तक इस बात को हम समझेंगे नहीं, हम केवल सपने की दुनिया में बस रहेंगे, और आज सपना काफी तीव्र हो जाएगा। लोग इतने उन्मत्त हो जाएंगे सपने में कि सब कुछ बिल्कुल भूल जाएंगे। जीव जो है भगवान का धाम छोड़कर यहां आया है भोग करने के लिए, भगवान से अलग होकर स्वतंत्र भोगी बनना चाहता है, लेकिन यह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भोक्ता एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। हम सब भोग्य हैं, भोक्ता नहीं। और आज के दिन या आज के रात कहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग सारे विश्व भर में इस भोगी के भावना में रहेंगे। जितना व्यक्ति ज्यादा भोग करने का प्रयास करेगा, हमें समझना चाहिए, वो इतना ज्यादा मिथ्या या स्वप्न के अंधकार में सो रहा है। लेकिन शास्त्र में हमें बताया जाता है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अमृतो मा अमृतगमय, अंधकार से उजाले में चले आओ, मृत अवस्था से अमृत अवस्था को प्राप्त करो। इसलिए भगवत गीता है, इसलिए श्रीमद् भागवत है, इसलिए ये मंदिर है, इसलिए प्रभुपाद जी ने यह संस्था बनाई, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, ताकि हम सबको सत्संग करने का मौका मिले। बाहर जो आज लोग करेंगे वो असत्संग है, और आज यहां हम जो कर रहे हैं वो सत्संग है। सत्संग वो है जो कि हमें सपने से जागृत कराएगा और हमें बतलाएगा कि आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, आप श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, उनकी सेवा करना ही आपका एकमात्र कर्तव्य है, यही जीवन की परिपूर्णता है, यही ध्येय है हमारा। जब सत्संग में आते हैं तो यही बात बार बार दोहराई जाती है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो इसके बिल्कुल विपरीत बातें हमें सुनने में मिलती हैं, और हमें बार बार सुनाया जाता है, नहीं तुम आत्मा नहीं, तुम शरीर हो। मंदिर में जब तुमने सुना वो भूल जाओ, सत्य यही है कि तुम शरीर हो, और ये संसार का भोग करना तुम्हारा धर्म है, और जितना ज्यादा तुम भोग करोगे उतना ज्यादा तुम सफल हो जाओगे, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। पैसे कमाओ, अच्छे गाड़ी बंगले बनाओ अपने लिए, समाज में कुछ नाम इज्जत कुछ कमाओ, और इस तरह से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ये मंदिर में गीता भागवत ये सब क्या है? ये सब दंत कथा है, ये सब काल्पनिक चीजें हैं, उन लोगों के लिए जिनकी बुद्धि कम है, जो भावुक हैं, जो दुनिया का सामना नहीं कर सकते हैं, जो पलायनवाद का को स्वीकार करते हैं, संसार के कड़े संघर्षों का सामना नहीं कर सकते हैं, इसलिए मंदिर में सत्संग में जाते हैं। ये सब हमें सुनाई देता है बाहर, लेकिन सत्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस संसार में भ्रम में है। जब एक व्यक्ति अपने सर पे खड़ा हुआ होता है, जैसे कि योगी योगाभ्यास करते समय कभी कभी शीर्षासन करना पड़ता है, सिर पे खड़ा होना, तो व्यक्ति सिर पे खड़ा हो जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि बाकी सब लोग उल्टे खड़े हैं। खड़ा तो उल्टा वो है, लेकिन उसे लगता है कि बाकी सब, अरे उनको क्या हो गया, उनके पैर ऊपर है सर नीचे है। तो ठीक उसी तरह से ये संसार में ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे आध्यात्मिक दृष्टि से शीर्षासन में उल्टे खड़े हैं, जहां सर होना चाहिए वहां पैर हैं, जहां पैर होने चाहिए वहां सर है, विपरीत दृष्टि। इसलिए वो सोचते हैं कि भगवान के भक्त ये कुछ अलग ही कर रहे हैं जो कि गलत है, मिथ्या है। लेकिन बार बार सत्संग में आने से हम उस बाहर के सपने से जागृत हो सकते हैं, लेकिन यहां भी वो सपना हमें छोड़ता नहीं, तंग करते रहता है, क्योंकि वहां लोग, उनका सपना इतना बड़ा है, देखिए सुनाई दे रहा है, कोई जागना चाहे भी लोग उसे खींच के सुला देंगे, सो जाओ जागो मत, देखो सपना कितना अच्छा है, देखो कितना सुख है तुम्हारे सपने में। कोई मंदिर में आने का प्रयास करे, उसके रिश्तेदार परिवार के सदस्य मित्र वगैरह वगैरह सब खींचेंगे वापस, अरे नहीं जाना, जागना नहीं, सोते रहो सोते रहो। जो जागने का प्रयास करेंगे उनको पागल समझते हैं। इस तरह से ये दुर्भाग्य है इस जगत में, लोग नहीं जानते, ये जानते हुए भी नहीं जानते कि जब मृत्यु आएगी सब कुछ खत्म हो जाएगा। भगवत गीता के 8वें अध्याय में मृत्यु की चर्चा काफी विस्तार में भगवान ने की है। इस मंगलवार के कार्यक्रम में गीता पाठ में 8वें अध्याय की चर्चा चल रही है, और भगवान ने इस 8वें अध्याय में बड़े विस्तार में बताया है कैसे योगी अलग अलग परिस्थितियों में से गुजर के आगे भगवान के धाम को प्राप्त करता है, और भगवान ने विस्तार में इस भौतिक जगत का वर्णन भी किया है और बताया है कि यह सारा भौतिक जगत नश्वर है। और इसके बाद वो अब वर्णन करने जा रहे हैं उस जगत का जो कि इस भौतिक जगत के परे है, जो भगवान का धाम है, जो शाश्वत जगह है, जिसका नाश कभी नहीं होता है, जहां पर भगवान अपने प्रिय नित्य भक्तों के संग निवास करते हैं, जहां केवल आनंद ही आनंद है, कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई संकट नहीं, उस स्थान में हमें भी जाना है। तो उस स्थान में जाने की तैयारी हमें करनी है। तो प्रवचन शुरू करने के पहले, जैसे कि हर बार करते हैं, सारे 8वें अध्याय का पाठ हम करेंगे। आपके सामने भगवद गीता है, तो हम एक साथ में श्लोक पाठ करेंगे। हरे कृष्णा। अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया है कि ये भौतिक जगत नश्वर है और जैसे जैसे ब्रह्मा जी की रात्रि होती है सारे जो निम्न श्रेणी के लोक हैं उनका नाश हो जाता है। हर एक ब्रह्मांड के भीतर कई लोक हैं, 14 भुवन हैं और पृथ्वी लोक बीच में है। ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि करता है वो सबसे ऊपर वाले लोक ब्रह्म लोक में निवास करते हैं और वहां से जब उनकी निद्रा होती है, उनकी रात होती है, तो प्रलय जल की वजह से सारे ब्रह्मांड भर में जल भर आता है। केवल ऊपर के जो लोक हैं वही मात्र रह जाते हैं। ब्रह्मा जी जब पुनः जाग जाते हैं तो फिर से सृष्टि की रचना होती है और इस तरह से हर एक दिन हर एक रात बीतती है ब्रह्मा जी की। यह भी करोड़ों करोड़ों साल की है और उसके बाद जब ब्रह्मा जी के पूरे 100 साल हो जाते हैं उस समय सारे ब्रह्मांड का अंत होता है, सारे ब्रह्मांड का नाश होता है, ब्रह्मलोक का नाश भी होता है और उस समय ब्रह्मा जी को भी देह त्यागना पड़ता है। अगर वो शुद्ध भक्त हैं तो भगवान के धाम में चले जाएंगे, अन्यथा उन्हें भी पुनः जन्म लेना पड़ेगा। कई ऐसे ब्रह्मांड हैं, हमारा जो एक ब्रह्मांड है वो तो एक बहुत छोटा साधारण ब्रह्मांड है। अनंत कोटि ऐसे ब्रह्मांड भरे हुए हैं इस भौतिक जगत में। इस एक जगत को भी जानना कितना कठिन है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं एक पेड़ के ऊपर कितने पत्ते हैं हम उनको भी गिन नहीं सकते, सर के ऊपर बाल कितने हैं वो भी गिन नहीं सकते। तो हम भगवान के धाम को कैसे जान सकते हैं और फिर भी लोग कहते हैं हम भगवान हैं। जब तक कि हम शास्त्रों से सुनेंगे नहीं ये ज्ञान हमें कभी नहीं मिलेगा। इस भौतिक सृष्टि को हमारे भौतिक बुद्धि से समझना ये असंभव है, न केवल मुश्किल परंतु असंभव। भगवान ने ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना ऐसी की है कि बड़े बड़े योगी दार्शनिक यहां तक कि देवता गण भी भ्रमित हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ कमल पुष्प के ऊपर उनको भी पता नहीं चला कि यह क्या है, यह सृष्टि का निर्माण मुझे कैसे करना है। भागवत में बताया जाता है कि जैसे एक छोटा सा फल जब हमारे हाथ की मुट्ठी में होता है तो किस तरह से हम उसे जानते हैं, वैसे ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड को जानते हैं क्योंकि उन्होंने इसकी रचना की है। कौन सा ग्रह कहां है, कौन से योनि कहां फैले हुए हैं, कैसे अलग अलग तत्व क्रमशः उनका निर्माण करना है। लेकिन ब्रह्मा जी भी पूरी तरह से समझते नहीं है कि ये कैसे हो रहा है। जैसे हम भोजन तो लेते हैं लेकिन अंदर कैसे पचन का कार्य चल रहा है वो हमें समझ में नहीं आता। किस तरह से जो अन्न है वो अंदर जाकर फिर वो हमारे शरीर में ताकत के रूप में परिवर्तित हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता। ब्रह्मा जी हालांकि इतने बड़े हैं, इतने बुद्धिमान हैं कि उन्होंने सारी सृष्टि की रचना की, समझ लीजिए कितना बड़ा काम किया ब्रह्मा जी ने। हमें छोटा सा घर बनाना होता है उसके लिए इंजीनियर आके ड्रॉइंग बनाते हैं, इतना इतनी योजना बनानी पड़ती है, इतने सारे ईंट लाना, सीमेंट लाना, इतने दिन पानी से उनका क्यूरिंग करना, बहुत सारी चीजें होती हैं। और अगर एक बड़े शहर का निर्माण करना हो कितना कठिन होता है, लेकिन ब्रह्मा जी ने अनंत ग्रह युक्त इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है, कितने बुद्धिमान होंगे। लेकिन स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी इस छोटे से ब्रह्मांड को भी नहीं समझ सकते हैं। हमारे लिए तो बहुत बड़ा है यह ब्रह्मांड, वैज्ञानिक कभी भी इस ब्रह्मांड को समझ नहीं पाएंगे। जितने भी वो दूरबीन लगाकर अपने यंत्र शस्त्र लगाकर करेंगे वो शक्य संभव नहीं है। लेकिन दूसरे ब्रह्मांडों की तुलना से ये छोटा है, और इस छोटे ब्रह्मांड को भी ब्रह्मा जी समझ नहीं पाते हैं पूरी तरह से, तो हम कैसे समझ पाएंगे। ब्रह्मा जी के जीवन की अवधि करोड़ों 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 सालों की है, और हमारी जीवन की अवधि केवल ज्यादा से ज्यादा 70-80 साल की है। और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं जो इस ब्रह्मांड से बहुत ज्यादा बड़े हैं, और इन सारे ब्रह्मांडों को मिलाकर इसे भौतिक जगत कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, उनका माधुर्य क्या है, उनके गुण क्या है, उनकी लीलाएं क्या है, उनके अलग अलग रूप क्या हैं, उनका नाम क्या है, और साथ साथ उनके धाम का भी वर्णन करते हैं। और इस भौतिक जगत का वर्णन करने के बाद, जो कि आपने पिछले मंगलवारों में कई मंगलवारों में सुना होगा, जो कि आज हम यहां दोहराएंगे नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने भी एक विस्तार में समझाया कि कैसे ये सृष्टि की रचना होती है। सबसे पहले तो ब्रह्मांड कैसे बनते हैं, और हर एक ब्रह्मांड के भीतर कैसे सृष्टि की रचना होती है। चैतन्य महाप्रभु ने ये श्रीमद् भागवत और अन्य ग्रंथों के आधार पर सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया, और फिर उन्होंने कहा कि हे सनातन, इस भौतिक जगत के परे एक सागर है, एक नदी है, जिसको विरजा कहते हैं, और ये सारा भौतिक जगत इस विरजा नदी के इस पार है। उस पार क्या है हम देख नहीं सकते भौतिक दृष्टि से। विरजा नदी के उस पार की बात तो दूर है, इस ब्रह्मांड के भीतर भी कितने सारे लोक हैं उनको भी हम नहीं देख सकते। और ब्रह्मा जी जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति जो है इस ब्रह्मांड के, वो ब्रह्मांड के भीतर क्या है सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड के बाहर क्या है वो भी नहीं देख सकते। इस ब्रह्मांड के भीतर जो इतने सारे लोक हैं वो केवल आधे ब्रह्मांड में है। आधा ब्रह्मांड जो है भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के दिव्य पसीने से भरा हुआ है। उनका पसीना हमारे पसीने की तरह नहीं है, उनका पसीना भी दिव्य है, इसलिए उनको गर्भ उदक शाही विष्णु कहते हैं। वो उस उदक पे, उस जल पे शयन करते हैं अनंत शेष के ऊपर, और उनके नाभि से कमल आता है, और उस कमल की दंडी के ऊपर पुष्प है, और वहां पर ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं स्वयंभू। उनके कोई भौतिक माता या पिता नहीं है, इसलिए उनको स्वयंभू कहते हैं। तो जो आधा ब्रह्मांड अंदर से जो आकाश अंतरिक्ष है उसमें ये भौतिक सृष्टि, मतलब ये एक ब्रह्मांड के अंदर जितने लोक हैं वो हैं। और इस अंडे के आकार में जो जगत है, ब्रह्मांड है, इसको घेर कर आवरण है, 7 तरह के आवरण, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और हर एक आवरण, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, आकाश इत्यादि, इनसे ये आवरण बने हुए हैं। और सबसे अंदर का जो आवरण है उसके बाद में जो आवरण है वो उससे 10 गुना ज्यादा चौड़ा है, और जो तीसरा आवरण है वो दूसरे आवरण से और 10 गुना ज्यादा है। इस तरह से करते करते जो ब्रह्मांड है वो बहुत बड़ा हो जाता है। ब्रह्मांड के भीतर जो जगह है वो आवरण के तुलना से देखा जाए तो बहुत छोटी जगह है, और इस छोटी जगह को भी हम नहीं जान पा रहे हैं आवरण कितना बड़ा है, और इस आवरण को पार करके हमारी दृष्टि नहीं जा सकती। ब्रह्मा जी भी नहीं देख सकते, कोई नहीं देख सकता, इसलिए इस ब्रह्मांड के भीतर केवल अंधकार है। जैसे एक बच्चा मां के गर्भ में जब होता है तो वहां अंदर कोई रोशनी नहीं आती है, अंधकार होता है, ठीक उसी तरह से एक अंडे के अंदर, मुर्गी का अंडा जो होता है उसके अंदर जब बच्चा होता है मुर्गी का, वह अंधकार अंधकार होता है, केवल बाहर नहीं देख सकता। उसी तरह से हम लोग भी इस ब्रह्मांड के बाहर क्या है ये नहीं देख सकते, और ये सारे जितने ब्रह्मांड हैं छोटे छोटे अंडे के बराबर हैं, और ये अंडे तैर रहे हैं इस विरजा के ऊपर। विरजा ये विशाल सागर है, कल्पना कीजिए अपने मन में हम कितने बड़े चीज के बारे में बात कर रहे हैं। और इस विरजा में और एक विष्णु निवास करते हैं जिनका नाम है महाविष्णु, कारण उदक शाही विष्णु, इसको कारण सागर कहते हैं विरजा को, क्योंकि सबकी उत्पत्ति वहीं से होती है, सबका कारण है। और वहां पे महाविष्णु निवास करते हैं, और जब वो बाहर सांस लेते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड, एक एक ब्रह्मांड उनके त्वचा के छिद्रों से निकलती है, और जैसे जैसे ब्रह्मांड बाहर जाते हैं वो बड़े होते जाते हैं, और आगे जब महाविष्णु अंदर सांस लेते हैं तो ये ब्रह्मांड सारे अंदर आ जाते हैं। और महाविष्णु के एक सांस में कितने सारे ब्रह्मा जी का जन्म होता है, उनकी मृत्यु होती है, सब कुछ अंदर उनके आ जाता है महाविष्णु के एक सांस में। तो ये सब विरजा में हो रहा है, विरजा के इस पार। लेकिन विरजा के उस पार क्या है, वहां भगवान का धाम है, लेकिन उस भगवान के धाम को हम देख नहीं पा रहे हैं। जैसे कभी कभी यहां एक बादल आ जाता है, खास करके बरसात के समय, और उस बादल की वजह से हम पूरी तरह से आकाश को नहीं देख सकते हैं। अब ये बताइए, बादल बड़ा है या आकाश? क्या बड़ा है? आकाश। लेकिन फिर भी बादल हमें आकाश को देखने में एक पर्दे के समान हो जाता है। हालांकि बादल इतना छोटा है फिर भी हम इतने विशाल आकाश को नहीं देख सकते। ठीक उसी तरह से इस भौतिक जगत में रहते हुए, इस भौतिक आवरण की वजह से हम विरजा नदी के उस पार जो भगवान का धाम है उसको हम नहीं देख सकते। लेकिन भगवान का धाम आध्यात्मिक आकाश है, बहुत बड़ा विशाल है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को समझाते हैं कि भगवान की सारी सृष्टि, मतलब उनका आध्यात्मिक जगत, उनका धाम और ये भौतिक जगत, दोनों मिलाकर अगर इसे हम भगवान की सृष्टि कहें तो इस भौतिक जगत को एक पाद विभूति कहते हैं, मतलब सारे सृष्टि का एक चौथाई हिस्सा। और भगवान का धाम जो आध्यात्मिक जगत है, जिसको पर व्योम कहते हैं, आध्यात्मिक आकाश, उसको त्रिपाद विभूति कहते हैं, तीन चौथाई हिस्सा भगवान के सृष्टि का। और उस त्रिपाद विभूति पर व्योम में भगवान के अनंत कोटि वैकुंठ लोक हैं, उस जगत को वैकुंठ जगत कहते हैं, वो है भगवान का धाम। और उस धाम का वर्णन यहां गीता के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में किया जा रहा है। पिछली बार तक 19वां श्लोक आपने सुना था, इस बार हम 20वें श्लोक से शुरू कर रहे हैं। तो आइए इस 20वें श्लोक को पढ़ते हैं और फिर इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं।
परस्तस्मातु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति परस्तस्मात्।
अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। अनुवाद दोहराइएगा। इसके अतिरिक्त तो भगवान ने पिछले श्लोकों में भौतिक जगत या इस प्रकृति का वर्णन किया है, अपरा प्रकृति। कल हम श्रील प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहे थे यहां मंदिर में। सुबह प्रभुपाद बता रहे थे ये दो प्रकार की शक्तियां हैं, अपरा और परा। अपरा मतलब भौतिक निकृष्ट और परा मतलब श्रेष्ठ उत्कृष्ट। आत्मा ये उत्कृष्ट श्रेष्ठ शक्ति से आती है और ये भौतिक जगत ये निकृष्ट या अपरा शक्ति से आता है। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अब तक मैंने तुम्हें इस भौतिक प्रकृति के बारे में बताया है, लेकिन ये मत सोचो कि ये एकमात्र प्रकृति है। एक परह प्रकृति भी है, परह तस्मात भाव अन्य है, एक और भाव भी है। ये भौतिक भाव जगत हो गया, लेकिन एक और प्रकृति है, परह तस्मात भाव अन्यो, जो कि इस जगत के अव्यक्त से परे है, व्यक्त और अव्यक्त से परे। इस भौतिक जगत के अंदर जो हम देख सकते हैं वो व्यक्त चीजें हैं, और ब्रह्मांड का जो आवरण है वो अव्यक्त है, उसको हम देख नहीं सकते। तो इस व्यक्त और अव्यक्त जगत के परे एक ऐसे धाम है हे अर्जुन, सनातन, जो कि सनातन है, शाश्वत है। यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु, जब ये सारा भौतिक जगत नष्ट हो जाता है तो वो जगत कभी भी नाश नहीं होता, न विनश्यति। इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण दो तरह के जगत का वर्णन कर रहे हैं गीता में, एक हमारा भौतिक जगत जो कि नश्वर है, और दूसरा भगवान का जगत, भगवान का धाम परव्योम, जो कभी भी नाश नहीं होता है। ऐसे कई लोग हैं जिनको शास्त्रों में, भगवान में, धर्म में कोई विश्वास नहीं है, और वो कहते हैं किसने देखा है ये भगवान का धाम, ये वैकुंठ जगत, ये सब सपना है, ये सब दंत कथा है। लेकिन प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसे लोगों की बुद्धि अल्प है, उनका ज्ञान अल्प है। इस भौतिक संसार का अनुभव जो उनको है, उस अनुभव के आधार पर वो उन चीजों के बारे में अनुमान लगाना चाहते हैं जो कि इस ब्रह्मांड के परे हैं, जो कि उनके इंद्रियों के परे हैं, जिनको कि उनके इंद्रियों से, उनके संशोधन की क्रियाओं से कभी भी वो जान नहीं सकते हैं। ये भौतिक सृष्टि या ब्रह्मांड के भीतर भी जो चीजें हैं उनको भी हमारी इंद्रियों से, संशोधन से हम कभी भी नहीं जान पाएंगे। प्रभुपाद बताते हैं कि अगर किसी बच्चे को जानना है कि उसका पिताजी कौन है, तो उसको संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। हर जगह जाके कोई लेबोरेटरी खोल देना, उसमें संशोधन करते रहना, दुनिया भर भ्रमण करना, सबको पूछना कौन है मेरे पिताजी, कैसे ऐसे एक एक न्याय की दृष्टि से नहीं, केवल माता को पूछना है। माँ को पूछेगा वो बच्चा तो उसे पता चलेगा कि पिताजी कौन है। तो शास्त्र या वेद ये माता है, और माँ हमें बताती है कि पिताजी कौन है, श्री कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, उनका धाम कैसा है। ये सारा ज्ञान गीता भागवत इत्यादि में दिया हुआ है, संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल नम्र भावना से, श्रद्धा भाव से हमें इस ज्ञान को गीता भागवत जैसे शास्त्रों से हमें स्वीकार करना चाहिए। इस भौतिक जगत में कई धर्म हैं, और इन धर्मों में अलग अलग शास्त्र पाए जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इन धर्मों के, इन अलग शास्त्रों में, हालांकि भगवान के धाम का वर्णन तो नहीं है लेकिन उल्लेख है, लेकिन विस्तार में कोई जानकारी नहीं दी गई है। भगवद गीता में भी भगवान केवल संक्षेप में उल्लेख करते हैं उनके धाम का, कि उनका धाम कुछ है, लेकिन ज्यादा ज्ञान नहीं देते। उदाहरणार्थ, न तद्भासेते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे धाम में वहां कोई सूरज की आवश्यकता नहीं है, वहां चांदनी की आवश्यकता नहीं है, अग्नि की आवश्यकता नहीं है, बिजली की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां हर चीज स्वयं प्रकाशमान है। यहां पर हमें सूरज, बिजली, ट्यूबलाइट, चांद का प्रकाश, ये सब चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जैसे हमने पहले कहा, ब्रह्मांड के भीतर स्वाभाविक तौर से सभी कुछ अंधकार है। जब अंधकार होता है तो कोई रोशनी का स्रोत चाहिए, तो ये है सूर्य, चांद इत्यादि। लेकिन भगवान का धाम तो प्रकाशमान है, वहां कोई अंधकार नहीं है, इसलिए ऐसे चीजों के लिए कोई आवश्यकता नहीं है वहां पर। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो उस धाम को प्राप्त होता है उसे वापस यहां लौटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो थोड़ा बहुत एक उल्लेख, हिंट दिया है भगवान ने उनके धाम के बारे में, लेकिन विस्तार में ज्ञान अन्य शास्त्रों में दिया हुआ है, जैसे कि श्रीमद् भागवत, ब्रह्म संहिता, अन्य पुराण इत्यादि। तो थोड़ा बहुत संक्षेप में आज सुनते हैं कि श्रीमद् भागवत में भगवान के धाम का क्या वर्णन है। ब्रह्मा जी जब तपस्या कर रहे थे तो भगवान ने उनको अपना धाम दिखलाया। बैठे बैठे कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी ने सारा वैकुंठ जगत देखा, मानो कि वो अपने आंखों के सामने है। जैसे हम कोई टेलीविजन या सिनेमा के सामने बैठते हैं और वहां के चित्र हम आंखों के सामने देखते हैं, उसी तरह से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने सारे वैकुंठ जगत को अपने दिव्य चक्षुओं से देखा। भगवान को, भगवान के धाम को इन भौतिक आंखों से हम नहीं देख सकते, इसके लिए हमें चाहिए आध्यात्मिक आंखें। ब्रह्मा जी का जन्म जब हुआ कमल पुष्प के ऊपर, जैसे कि पहले हम चर्चा कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने इधर उधर देखा, नीचे देखा, ऊपर देखा, बाएं दाएं दाहिने ओर देखा, लेकिन समझ नहीं पाए कि वो कहां है। अपने आसन को देखा, इस कमल पुष्प को, और सोचने लगे कि ये कमल पुष्प क्या है, ये कहां से आया है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, और मेरे हर तरफ ये सब क्या है, ये अंधकार अंधकार, ये कहां हूं, मैं कहां से आया। उनके मन में विचार आया कि मुझे सृष्टि की रचना करनी है, लेकिन किस दिशा में मुझे आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से सृष्टि की रचना करनी चाहिए, ब्रह्मा जी को मालूम नहीं पड़ा। इधर उधर देखते रहे, भ्रमित हो गए ब्रह्मा जी, यहां तक कि उस कमल के डंडे में ऊपर नीचे आते जाते रहे, देखते रहे कि मैं कहां हूं, लेकिन समझ में नहीं आया उनको। अचानक उनको दो अक्षर सुनाई दिए अंतरिक्ष में, और शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ये दो अक्षर 16 और 21वें अक्षर थे। वैसे संस्कृत या देवनागरी लिपि जो भी जानते हैं आप, सब तो जानते हैं, आप जानते हैं कि क क ख ग घ ङ क से म तक जो अक्षर हैं, जो वर्ण हैं, उनको स्पर्श वर्ण कहते हैं, और उसके आगे से जो है उनको तालव्य वर्ण कहते हैं। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने स्पर्श वर्ण के 16वें और 21वें वर्ण को सुना। कौन सा है, कौन से हैं ये दो अक्षर? त और प, त प, त प, त प। तो ब्रह्मा जी ने सोचे क्या त प ये क्या है, सुने, फिर उन्होंने सोचा ये कोई दिव्य वाणी है, ये कोई साधारण वाणी नहीं है, इसका मतलब है मुझे तप करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। ब्रह्मा जी इतने बुद्धिमान थे, जन्म लेने के तुरंत बावजूद किसी ने उनको उपदेश नहीं किया था, वो कोई स्कूल पाठशाला में नहीं गए थे, लेकिन जब उन्होंने ये दो अक्षर सुने त प, उनको पता चला कि भगवान इशारा दे रहे हैं कि तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, सारे ब्रह्मांड में जो सबसे बुद्धिमान पुण्यवान व्यक्ति होता है उसको ब्रह्मा जी का पद मिलता है। ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, वरुण देव, वायुदेव, ये सब पद हैं। और ब्रह्मा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं होने की वजह से पूर्व जन्मों की सुकृति तपस्या के बल पर वो इस आदेश को समझ पाए कि भगवान चाह रहे हैं कि मैं तपस्या में अपने आप को स्थित कर दूं। फिर ब्रह्मा जी ने आसन धारण किया और उन्होंने देवताओं के लोकों के दृष्टि से 10,000 वर्ष तपस्या की। बताया जाता है कि देवताओं के 12 घंटे हमारे 6 महीने, मतलब उनका पूरा एक दिवस और एक रात्रि, मतलब 24 घंटे उनके, हमारा 1 साल हो जाता है। तो उनके 10,000 साल हमारे कितने साल हुए, कल्पना कीजिए। मतलब हमारे एक अनुभव के आधार पर देखा जाए तो ब्रह्मा जी ने लाखों लाखों सालों तक तपस्या की और इस तरह से उन्होंने अपने मन को और इंद्रियों को पूरी तरह से वश में कर लिया। इसलिए ब्रह्मा जी को सबसे बड़े तपस्वी कहते हैं। आदि आदि कवि, सबसे बड़े दार्शनिक, सबसे बड़े तपस्वी। और इतने सालों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी के सामने भगवान ने सारा वैकुंठ जगत प्रदर्शित कर दिया। और ये वैकुंठ जगत के अंदर क्या है इसका वर्णन यहां सुखदेव गोस्वामी करते हैं। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं सबसे पहले कि उन्होंने जान लिया कि वैकुंठ जगत, उसमें कोई रजोगुण तमोगुण, यहां तक कि सत्वगुण का भी कोई प्रभाव नहीं है। यहां सब कुछ प्रदूषित भौतिक जगत में इसलिए हो जाता है कि रजोगुण और तमोगुण ज्यादा है, लेकिन भगवान के धाम में सत्वगुण, ये भौतिक सत्वगुण भी नहीं है। सब कुछ वहां विशुद्ध सत्व है, केवल आध्यात्मिक है। इन भौतिक गुणों के प्रभाव से यहां हर एक व्यक्ति शोक करता है और नाना प्रकार की चीजों को प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। इस जगत में रहते हुए भी अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त कर लेता है, वो भी 3 गुणों के परे हो जाता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण गीता में वर्णन करते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समह सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो व्यक्ति ब्रह्म भूत अवस्था के ऊपर स्थित है, हमेशा वो प्रसन्न रहता है, कभी भी शोक नहीं करता, कांक्षति कभी भी हाय हाय नहीं करता, कुछ चीज चाहता नहीं है। समा सर्वेशु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, सारे प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, ऐसी अवस्था में मेरी भक्ति प्राप्त कर लेता है, ऐसे भगवान कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने यह भी अनुभव किया कि भगवान के धाम में इस माया शक्ति का कोई प्रभाव नहीं है, वहां सब सत्य में निवास कर रहे हैं और वहां काल का प्रभाव नहीं है। यहां काल का प्रभाव है, काल की वजह से यहां पर जन्म होता है, मृत्यु होती है, बारंबार ये संसार का चक्र चलता है। काल की वजह से 6 तरह के परिवर्तन यहां भौतिक जगत में दिखाई पड़ते हैं। कौन से हैं? जन्म, दूसरा बढ़ना है, कोई चीज का जन्म होता है फिर वो बढ़ता है, तीसरा परिपक्व अवस्था को प्राप्त करता है, चौथा प्रजनन, बाय प्रोडक्ट्स। जैसे हम देखते हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है उसके बाद बड़ा होता है, उसका शरीर बड़े होता रहता है, फिर परिपक्व अवस्था में आता है, विवाह हो जाता है, फिर प्रजनन होता है, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है घटन घटन होने लगता है, और घटन के बाद मृत्यु। तो ये छह तरह के परिवर्तन होते हैं भौतिक सृष्टि में, और ये काल के प्रभाव से होते हैं। लेकिन भगवान के धाम में काल का इस तरह का प्रभाव नहीं है, इसलिए वहां पर सब कुछ नवनवायमान है, हमेशा ताजा है, फ्रेश है। वहां पर कोई चीज घिसपिटी हुई नहीं लगती है। यहां किसी चीज को बार बार करने से हम ऊब जाते हैं, लेकिन भगवान के धाम में कोई ऊब नहीं जाता, हर चीज वहां ताजी है। इस तरह से ब्रह्मा जी ने अनुभव किया सारा वैकुंठ जगत, और उनके आंखों के सामने उन्होंने वैकुंठ लोक के निवासियों को देखा। वैकुंठ जगत केवल ऐसा कोई जगत नहीं है जहां केवल प्रकाश है और कुछ नहीं है, निराकार नहीं। ऐसे कई दार्शनिक हैं जो सोचते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि जगत के परे केवल निराकार प्रकाश है, लेकिन इस प्रकाश के भीतर कितने सारे वैकुंठ लोक हैं, अनंत कोटि वैकुंठ लोक हैं, और उन वैकुंठ लोकों में बहुत सारी विविधता है। उसमें भी व्यक्ति हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, घर हैं, वाहन हैं, पेड़ हैं, पक्षी हैं, पशु हैं। जिस तरह यहां हम विविधता देखते हैं, अलग अलग रूपों को देखते हैं, भगवान के धाम में भी ऐसे ही होता है। बल्कि भगवान के धाम में ऐसा है इसलिए यहां पे विविधता है, क्योंकि गीता में जैसे भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय में बताते हैं कि ये भौतिक जगत भगवान के धाम का एक विकृत प्रतिबिंब है। तो अगर यहां इतनी विविधता है, नाना प्रकार के रूप हैं, आकार हैं, तो भगवान के धाम में भी तो होनी चाहिए। अगर हम किसी नदी में जाएं और नदी के पानी में हम किसी वृक्ष का प्रतिबिंब देखें जिसमें शाखाएं हैं, पत्ते हैं, फूल हैं इत्यादि, तो हम जान सकते हैं कि तट पे जो वृक्ष खड़ा है उसमें भी शाखाएं हैं, पत्ते हैं, फूल हैं इत्यादि। तो यहां हम इतने सारे विविधता देखते हैं तो भगवान के धाम में भी तो होना चाहिए। और ब्रह्मा जी ने देखा कि वैकुंठ के निवासी कैसे होते हैं, दिखने में बड़े सुंदर। उनका वर्ण कैसा है, ब्रह्मा जी के सामने जो दृश्य आया वो ऐसे था कि वो श्याम वर्ण के थे, बड़े सुंदर दिखने में, बड़े तेजस्वी, प्रकाशमान, और साथ साथ में उनके चार भुजाएं थीं। उनके आंखें कमल पुष्प के, कमल पत्र के बराबर थीं। उनका पोशाक, उनके वस्त्र पीले रंग के थे। उनका शरीर बहुत सुंदर और आकर्षक था। उनकी आयु तरुण अवस्था की थी और उनके नाना प्रकार के आभूषण थे, जैसे मोतियों का हार, उनके शरीर के ऊपर वैदुरी मणि और नाना अन्य प्रकार के मूल्यवान मणि और रत्न थे, और कई के कानों में कुंडल थे, और बड़े हसमुख चेहरे से इधर उधर जा रहे थे। साथ साथ ब्रह्मा जी ने देखा कि वहां हवाई जहाज चल रहे हैं, लेकिन हमारे इंडियन एयरलाइंस के हवाई जहाज की नहीं तरह नहीं। यहां के हवाई जहाजों में क्या होता है, कुछ गड़बड़ हो गया तो नीचे क्रैश हो जाते हैं, सारे लोग उस जहाज में मर जाते हैं। यहां कोई बंदूक लेकर घुस जाते हैं फिर सारे जहाज का अपहरण कर जाते हैं। वहां जो जहाज होते हैं, हवाई जहाज, उनको कोई पेट्रोल डीजल की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वेच्छा से चलते हैं, वो भी जीवित हैं। सब कुछ भगवान के धाम में जीवित है, चेतन है, चिन्मय जगत है वो, हर अणु चिन्मय है। और ये हवाई जहाज उड़ रहे हैं, इनमें वैकुंठ लोक के जो व्यक्ति हैं वो रमण कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं, यात्रा में जा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, और उनके साथ में उनकी पत्नियां हैं, स्त्री हैं, जिनका वर्ण जो है, शरीर का वर्ण बिजली के समान है, वो भी दिखने में बहुत सुंदर हैं। और इस तरह से लगता है कि जब ये पुरुष और स्त्री दोनों साथ में जा रहे हैं, मानो कि बादल में बिजली, बादल और बिजली चल रहे हैं, ऐसे ब्रह्मा जी देख रहे हैं सारा दृश्य। लेकिन वहां पर जो कौटुंबिक जीवन है हमारे भौतिक जगत के कौटुंबिक जीवन की तरह नहीं है। वहां कोई काम वासना नहीं है, वहां केवल भगवान की सेवा, केवल शुद्ध भक्ति, केवल घूमते हैं फिरते हैं भगवान का संकीर्तन करते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए, भगवान का दर्शन करते हुए रमण करते रहते हैं, इतना दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। वैसे वैकुंठ जगत में किसी को अगर कहीं जाना हो तो कोई विमान या हवाई जहाज की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन केवल उनके जीवन को और रमणीय बनाने के लिए भगवान विष्णु ऐसी व्यवस्था करते हैं उनके भक्तों के लिए। इस तरह से सब इधर उधर घूम रहे हैं सारे वैकुंठ जगत में। साथ साथ ब्रह्मा जी ने देखा लक्ष्मी जी विराजमान है, भगवान विष्णु के चरण कमलों में उनकी सेवा कर रही हैं और साथ साथ भगवान का गुणगान कर रही हैं, उनके लीलाओं का वर्णन कर रही हैं और भगवान विष्णु स्वयं जिनके चतुर्भुज हैं और जो बड़े सुंदर दिखते हैं वो वहां पर योग पीठ में विराजमान है। योग पीठ मतलब वो स्थान जहां भगवान अपने सिंहासन पर बैठते हैं और अपने भक्तों के संग में बैठते हैं, उनका दर्शन देते हैं सभी को। भगवान विष्णु वहां अपने अनेक शक्तियां उनके भक्त पार्षद इत्यादि से घिरे हुए हैं, जिससे से एक राजा उसके इर्द गिर्द हमेशा उसके मंत्री रहते हैं, उसके सेक्रेटरी रहते हैं, नौकर चाकर घूमते फिरते हैं। उसी तरह से वैकुंठ में भगवान विष्णु या नारायण के साथ में हमेशा उनकी अनेक शक्तियां रहती हैं। उनकी 16 प्रमुख शक्तियां हैं जैसे श्री भू इत्यादि, और वो भी उनके साथ में हैं, और महान भक्त वो भी उनके साथ है जैसे नंद उपनंद इत्यादि। और भगवान विष्णु वहां सिंहासन पर विराजे थे और अपने भक्तों की ओर मुड़ रहे थे हसमुख चेहरे से और कुछ बातचीत कर रहे थे, और भक्त और भगवान के बीच में जो संबंध था बहुत आकर्षक लग रहा था, बहुत सुंदर था, प्रेम का संबंध। भगवान के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, वो बड़े संतुष्ट दिखाई पड़ रहे थे। उनके भी वस्त्र पीले थे, पीतांबर, उन्होंने भी कुंडल और किरीट पहना हुआ था, उनके भी 4 भुजाएं थीं और उनके भी वक्षस्थल में वैदुर्य मणि इत्यादि, साथ साथ श्रीवत्स लक्ष्मी देवी का चिन्ह। अन्य जो भगवान के धाम में निवास करने वाले व्यक्ति हैं उनको भी भगवान के जैसा ही रूप था, ब्रह्मा जी ऐसे देख रहे थे। इसको सारूप्य मुक्ति कहते हैं। सारूप्य मुक्ति मतलब भगवान के वैकुंठ लोकों के निवासियों को भगवान की तरह ही एक रूप मिलता है। अगर दोनों भगवान और भक्त वहां सामने खड़े रहे उनको पहचानना मुश्किल है कि कौन भगवान है और कौन भक्त है। केवल 2 अंतर होते हैं, एक है वक्षस्थल पे कौस्तुभ मणि और दूसरा श्रीवत्स, श्रीवत्स जो कि लक्ष्मी देवी का चिन्ह है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने देखा कि सारे भक्त लक्ष्मी देवी के साथ में उनका गुणगान कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं विविध प्रकार से, कोई क्या अर्पण कर रहा है, कोई गुणगान कर रहा है, बड़ा मधुर रम्य वातावरण। और साथ साथ में उनके कई द्वारपाल उनके धाम का रक्षण कर रहे हैं। तीसरा जो दरवाजा है वो उसमें जय और विजय वो द्वारपाल है। जय और विजय का नाम तो हम सबने सुना है, किसके लीला, कौन सी लीला के संदर्भ में, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 4 कुमारों ने उनको शाप दिया और उनको फिर यहां पर आना पड़ा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। तो जय और विजय, बीच वाले दरवाजे में भद्र और सुभद्र, और अंदर के दरवाजों में चंड और कुमुद, ये द्वारपाल। वैसे द्वारपाल की क्या जरूरत है, वहां कौन जा सकता है, कोई नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी भगवान के धाम में ये अलग अलग भक्त भगवान की सेवा इस तरह से करते हैं। तो ये सारे दृश्य ब्रह्मा जी अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने ये दृश्य देखने के बाद वो भाव विभोर हो गए, आनंद से भर गया उनका हृदय और फिर उनके आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे और वो कुछ बोल नहीं पाए, केवल ऐसे ही निरुत्तर रह गए, कुछ एक वचन नहीं बोल पाए अपने कमल पुष्प के ऊपर, आसन के ऊपर विराजमान थे। और उस समय भगवान विष्णु उनके सामने अचानक प्रकट हुए, आंखों के सामने। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ भगवान को देखकर, और फिर भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया और ब्रह्मा जी से शेक हैंड किया। हाउ डू यू डू मिस्टर ब्रह्मा, आप कैसे हैं? ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे कौन है, भगवान स्वयं भगवान आए हैं, मुझसे हाथ मिलाया। जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, अचानक सचिन तेंदुलकर आते आपसे हाथ मिलाते हैं, आप कैसे हैं? या प्रधानमंत्री आते हैं या देश के राजा आते हैं, आप कैसे हो? तो आपको क्या, आप 10 दिन भूले हाथ धोएंगे नहीं ना? हम सोचेंगे अरे वाह उन्होंने हाथ मिलाया। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, स्वयं भगवान हमारे सामने आए और मुझसे हाथ मिलाया। और फिर ब्रह्मा जी को भगवान ने श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया। सारे ब्रह्मांड के इतिहास में यह पहली बार श्रीमद् भागवत की कथा हुई। हम सोचते हैं ना कि पहली बार कथा सुखदेव गोस्वामी ने की थी, लेकिन पहली बार नहीं, पहली बार तो भगवान ने, विष्णु ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था। सबसे पहले उनको तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि अंदर से सृष्टि की रचना के लिए ज्ञान दिया था, बाहर से भी दिया। फिर उन्होंने संक्षेप में उनको भागवत का उपदेश दिया, केवल 4 श्लोकों में। इसको चतुःश्लोकी भागवत कहते हैं। सारांश, सारे भागवत का सार इन 4 श्लोकों में है। जिस तरह से भगवत गीता चतुःश्लोकी गीता है, कौन से 4 श्लोक हैं बता सकते हैं? भगवत गीता के कौन से 4 श्लोकों को चतुःश्लोकी गीता कहा जाता है? 10वें अध्याय में कौन से श्लोक से? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुध भाव समन्विता। हे अर्जुन, सब कुछ आध्यात्मिक और भौतिक मुझसे ही उत्पन्न होता है। 10वें अध्याय के 8वां श्लोक। उसके बाद में मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तस् परस्परम् कथयन्तश्च माम नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान अपने बारे में वर्णन करने के बाद भक्तों का वर्णन करते हैं कि मेरे भक्त कितने महान हैं, सतत केवल मेरी कथा करते रहते हैं और किसी चीज में उनको कोई रुचि नहीं है। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, केवल मेरे कथाओं में रमण करते रहते हैं। जब आपस में मिलते हैं तो मेरी कथा के अलावा कुछ नहीं बात करते हैं। तो हमारे लिए आदर्श है, हम भक्तों के बीच में जब मिलते हैं केवल भगवान या भगवान की सेवा के बारे में चर्चा करनी चाहिए और किसी भौतिक चीज के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद 3रा श्लोक, तेषां सतत युक्तानां, हम साथ में बोलेंगे, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं ये न माम उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं कि उन भक्तों को, तेषां, जो कि सतत मेरे बारे में चर्चा करते रहते हैं, उनको मैं अंदर से ज्ञान देता हूं जिससे कि वो मेरे पास आ सके, मुझे प्राप्त कर सके, वो दिव्य दृष्टि में प्रदान करता हूं। और अगला श्लोक, तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। ये मेरी अनुकंपा है, हे अर्जुन, इस तरह से ज्ञान का दीप मैं प्रज्वलित करता हूं उनके हृदय के अंदर और इस तरह से वो मेरे पास पहुंच सकते हैं। तो ये चतुःश्लोकी गीता है। उसी तरह से भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुःश्लोकी भागवत सुनाया। यह चतुश्लोक की भागवत आज हमें सुनने के लिए समय नहीं है, और कभी सुनते हैं। भगवान ने इस तरह से ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर फिर वो ओझल हो गए और ब्रह्मा जी को पूरी तरह से ज्ञान आ गया। भगवान ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद भी दिया था, ब्रह्मा जी के तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए थे। ब्रह्मा जी ने एक वरदान मांगा था भगवान से कि हे भगवान, आपने मुझे ये सृष्टि की रचना करने के लिए ज्ञान दिया है, लेकिन मैं आपसे ये वरदान चाहता हूं कि मुझे जो सबसे श्रेष्ठ पद मिला है इस ब्रह्मांड के भीतर, इससे मेरे अंदर कभी घमंड ना आए, मैं हमेशा नम्र रहूं। कितना सुंदर वरदान मांगा है ब्रह्मा जी ने। हम सोचते हैं कि हरेक संसद में हमारे नेता आए हैं, उनको भी ऐसे व्रत लेना चाहिए कि प्रजा ने हमको चुन लिया है, हमें कोई घमंड नहीं होगा, हम केवल जनता की सेवा करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने हृदय से ऐसे प्रार्थना की भगवान से। भगवान इस प्रार्थना से प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, चिंता नहीं करो ब्रह्मा, मेरे कृपा से तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे माया से। और फिर ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि का कार्य शुरू कर दिया। इस तरह से भगवान ने ब्रह्मा जी को सारा वैकुंठ जगत का दर्शन कराया। ये सत्य है। यहां पर हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत में भगवान के धाम का वर्णन न केवल है, लेकिन उनके धाम में क्या चलता है, कौन निवास करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या आभूषण हैं, उनके वाहन कैसे हैं, उनके घर कैसे हैं, इन सब चीजों का वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को आगे बताते हैं कि भगवान का धाम जो है उसके दो भाग हैं। एक को वैकुंठ कहते हैं, वैकुंठ लोक, और दूसरा है गोलोक वृंदावन। परव्योम या आध्यात्मिक आकाश में अनंत कोटि वैकुंठ लोक हैं, और उनमें से जो मुख्य लोक है वो है गोलोक वृंदावन, लेकिन अन्य जितने भी लोक हैं उनको वैकुंठ लोक कहते हैं। हर एक वैकुंठ लोक के ऊपर भगवान का एक चतुर्भुज रूप निवास करता है। भगवान उस वैकुंठ लोक के ऊपर निवास करके अपने भक्तों के संग रमण करते हैं, जैसा कि ब्रह्मा जी ने देखा था। जो दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा था वो हर एक वैकुंठ लोक में चलता है, और ऐसे अनंत कोटि वैकुंठ लोक हैं। हर एक वैकुंठ लोक में जो अधिष्ठाता रूप है भगवान का, उनके अलग अलग नाम हैं, जैसे केशव, वामन, जनार्दन, हरि, विष्णु, उरुक्रम, त्रिविक्रम इत्यादि। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मधुसूदन, माधव, दामोदर इत्यादि। ये अलग अलग नाम हैं, और इनके चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म है, और कौन से हाथ में क्या है उसके हिसाब से उनके नाम अलग हो जाते हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया। इस तरह से अलग 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 रूप भगवान के हैं, सारे वैकुंठ जगत में फैले हुए हैं, और हर एक वैकुंठ लोक कितना बड़ा है, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, एक योजन मतलब 8 मील, एक योजन गुना 10 गुना 100 गुना 1000 गुना 10000 गुना 1 लाख गुना 10 लाख गुना 1 करोड़ गुना आगे चलते हैं। मतलब इतना एक वैकुंठ लोक की चौड़ाई है। मतलब भगवान के धाम के एक लोक को हम नाप तोल नहीं सकते, वो चौड़ाई एक लोक की, और ऐसे अनंत कोटि वैकुंठ लोक हैं। कल्पना कर सकते हैं हम, थोड़ा बहुत थोड़ा कुछ स्वाद आ सकता है, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी विशाल नहीं है कि हम समझ सकें। जैसे कि अगर चींटी है, अगर आप चींटी की भाषा जानते और आपने चींटी से कहते कि देखो बेलगाम शहर कितना बड़ा है, समझने का प्रयास करो, चींटी समझ पाएगा? चींटी को तो आपका घर है उतना भी समझ में नहीं आएगा, वो कठिनाई से वो आपका घर समझ पाएगा, वो बेलगाम शहर कैसे समझेगा, उसके लिए समझना तो नामुमकिन है। तो जिस तरह से इस चींटी के लिए हो सकता है सारा कर्नाटक राज्य हो, भारत देश हो, उसी तरह से हमारे लिए ये सारे एक ब्रह्मांड है। और इस एक ब्रह्मांड के अलावा कितने सारे ब्रह्मांड, और उसके परे विरजा, विरजा के परे वैकुंठ लोक। देखिए भगवान की सृष्टि अचिंत्य, और इतने सारे वैकुंठ लोकों में सारे लोग शाश्वत हैं, नित्य हैं, सब शुद्ध भक्त निवास करते हैं वहां पर। वहां कोई कुंठ नहीं, कुंठ मतलब चिंता तकलीफ कुछ नहीं, आनंद ही आनंद है। सारा आध्यात्मिक जगत परव्योम एक कमल पुष्प की तरह है। कमल पुष्प को आपने देखा होगा, है क्या अंदर यहां कमल पुष्प तुम्हारे पास? आप कमल पुष्प को देखिए, बीच का हिस्सा होता है और फिर पत्र होते हैं अलग अलग। तो बीच का हिस्सा है इसको गोलोक वृंदावन कहते हैं, और अलग अलग पत्र जो हैं पेटल्स, उसके ऊपर ये सारे अनंत कोटि वैकुंठ लोक स्थित हैं। तो गोलोक वृंदावन सारे वैकुंठ जगत में सबसे महत्वपूर्ण लोक है, क्योंकि इस लोक के ऊपर भगवान का आदि रूप, मूल रूप स्वयं भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। वैकुंठ लोकों में भगवान के चतुर्भुज रूप विराजमान है, लेकिन गोलोक वृंदावन में ओरिजिनल रूप में, अपने आदि रूप में, द्विभुज रूप में, बांसुरी बजाते हुए, गायों को चराते हुए, गोपियों के साथ रासलीला करते हुए भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। उसका धाम का नाम है गोलोक वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु कहते उसका दूसरा नाम है गोकुल धाम। गोलोक गोकुल धाम, जहां सुरभि गाय बहुत चरती हैं, यह है गोकुल धाम। और गोकुल धाम जो गोलोक वृंदावन है वो भी एक कमल की तरह है, और वहां भी अलग अलग भाग हैं जिनका वर्णन ब्रह्म संहिता में भी आता है और अन्य शास्त्रों में भी। भगवान का धाम का जो पुष्प है वो भगवान की इच्छा से कभी बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में अवतार लेते हैं तो अपने धाम को साथ में लेकर आते हैं। 5000 वर्ष पूर्व जब श्री कृष्ण प्रकट हुए यहां पर तो सारे धाम को लेकर आए। अब जिस जगह को हम व्रजभूमि या वृंदावन समझते हैं, जो कि दिल्ली के पास में है, वो साधारण जगह नहीं है, वो साक्षात भगवान का धाम है गोकुल। और इस गोकुल में और उस गोलोक में कोई अंतर नहीं है। इसको भौम वृंदावन कहते हैं, वो वृंदावन जो कि भौतिक जगत में प्रकट कराया है भगवान ने, लेकिन है वही जगत। और अगर हमने भगवान के वृंदावन या ब्रज भूमि का नक्शा देखा, या हमने अगर हम यात्रा के लिए अगर गए हों, तो हमें ज्ञात होगा कि एक जगह दूसरे जगह से काफी दूर है पैदल। अगर हम नंदगांव से गोवर्धन जाना है या गोवर्धन से हमें वृंदावन जाना है तो पैदल जाने के लिए काफी समय लगता है। लेकिन श्रीमद् भागवत में हम पढ़ते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो रोज पैदल जाया करते थे और बहुत जल्दी पहुंच जाते थे। इस तरह से भगवान अपने धाम को कमल पुष्प के समान कभी छोटा कर सकते हैं, कभी वो पुष्प खिल जाता है तो लंबाई ज्यादा हो जाती है। जब भगवान लौटना चाहते हैं तो पुष्प फिर से अंदर आ जाता है ताकि भगवान जल्दी जल्दी से अपने घर में जा सकते हैं। इस तरह भगवान का धाम भी भगवान की सेवा में तत्पर रहता है। भगवान का धाम भी कृष्ण जैसे ही शक्तिमान है, और श्री कृष्ण की सेवा भी अलग अलग तरह से करता है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बड़े सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं भगवान के धाम का, इस गोलोक वृंदावन का। ब्रह्म संहिता में बांटेंगे हमें क्या चल रहा होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारे लिए। ब्रह्मा जी ने जो वैकुंठ लोक का दर्शन किया था उसका वर्णन तो हमने सुना श्रीमद् भागवत से, लेकिन ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गोलोक वृंदावन का भी दर्शन किया, और उसका वर्णन इस ब्रह्म संहिता में है। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए थे तीर्थ यात्रा में, तो जब वो श्रीरंग पहुंचे तो वहां के ब्राह्मणों से उन्होंने ये ग्रंथ ब्रह्म संहिता का पांचवा अध्याय वो लेकर आए। अन्य अध्याय इसके अभी पाए नहीं जाते हैं, किसी को नहीं मालूम अन्य अध्याय कहां है, केवल पांचवा अध्याय मिला। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसको इसका अनुवाद करके फिर ये पुस्तक छपा है, ब्रह्म संहिता। बहुत सुंदर किताब है, हालांकि भाषा इसकी बहुत कठिन है, लेकिन यहां बहुत कुछ हमें जानने के लिए योग्य है कि भगवान का धाम कैसा है, भगवान दिखने में कैसे हैं, उनका रूप कैसा है, उनके कपड़े कैसे, आभूषण कैसे, कैसे सृष्टि की रचना हुई, कैसे सृष्टि का संहार होगा, इस सब का ज्ञान ब्रह्मा जी यहां करते हैं बड़े सुंदर ढंग से। और ये प्रार्थना हम लोग हर रोज मंदिर में गाते हैं, और खास करके 7:15 सुबह जब श्रृंगार दर्शन होता है तो हम इन दो श्लोकों को ही गाते हैं। तो भगवान के धाम का वर्णन आइए संक्षेप में हम करते हैं। तो चिंतामणि प्रकर सदमश श्लोक हम सब साथ में बोलेंगे, ठीक है।
चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि।
भगवान श्री कृष्ण के बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं, लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयंतम्, लाखों लाखों सुरभि गाय गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं। पहले ब्रह्मा जी ने वैकुंठ का वर्णन किया था, अब गोलोक का वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि गोलोक वृंदावन में लाखों लाखों ऐसे सुरभि गाय हैं जो कि कामधेनु गाय हैं। यहां के गाय कितने लीटर दूध दे सकते हैं? 2 लीटर 5 लीटर 10 15 लीटर 20 30 दे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन गोलोक वृंदावन के गाय कामधेनु गाय होने के नाते वो सागर, अनंत सागर जैसे दूध उत्पन्न कर सकते हैं, और वो अमृत है वो दूध। ऐसे गायों को चराने वाले हैं श्री कृष्ण। लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयंतम्, अभिपालयंतम मतलब पालन करते हैं, इसलिए उनका नाम है गोपाल। और उनका धाम कैसे है? चिंतामणि प्रकर सदमशु, नाना चिंतामणि रत्नों से बना हुआ है, सुशोभित है उनका धाम। कल्प वृक्ष, वहां हर एक वृक्ष जो है वो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब जो हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। यहां अगर ऐसे कोई वृक्ष होते तो सारी प्रजा यहां पर उसके नीचे आ जाती। मुझे वो लॉटरी टिकट जीतना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन यहां के जो कल्प वृक्ष अगर होंगे भी, भगवान के धाम के कल्प वृक्ष की तरह नहीं है। स्मरण आता है कि यहां के कल्प वृक्ष की कथा, जब एक आदमी था, यात्रा में गया था कहीं किसी काम से, व्यवसाय के काम से, और शाम को किसी स्थान पर पहुंचा, वहां थोड़ा आराम करना चाहता था। एक अच्छा वृक्ष देखा, उस वृक्ष के नीचे बैठ गया और उसने सोचा, मैं बहुत थक गया हूं, अगर कोई अच्छी तकिया वगैरह होती तो कितना अच्छा होता। अचानक तकिया आ गया, अरे वाह, तो तकिए पे आराम करके लेट गए। अभी अच्छा सा कोई पंखा होता, कुछ हवा आ जाती तो कितना अच्छा हो जाता, शीतल हवा। अचानक शीतल हवा शुरू हो गई, अरे वाह। फिर से बहुत प्यास लगी है, शीतल जल चाहिए, अचानक शीतल जल आ गया। थोड़े बहुत फल फूल मिल जाते खाने के लिए, पेट बहुत भूख लगी है, अचानक वहां भोजन आ गया। ये आदमी सोचने लगा कि अरे चमत्कार, अहो आश्चर्यम, ये क्या बात है, क्या ये झाड़ तो कल्पवृक्ष नहीं है। फिर सोचते सोचते सोचने लगा कि यहां तो सब कुछ है, लेकिन अगर यहां शेर आया, मुझे खा गया तो क्या होगा,
तो शेर आया खा गया उस आदमी को, खत्म उसकी कल्प वृक्ष की कथा खत्म हो गई। तो यहां भौतिक जगत में कल्प वृक्ष हो भी तो कल्प वृक्ष से दूर ही रहना चाहिए, लेकिन भगवान के धाम में जो कल्प वृक्ष है वो उनके शुद्ध इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान के धाम में कोई भी व्यक्ति भौतिक इच्छा नहीं रखता, वहां कोई भय नहीं होता, सभी लोग केवल भगवान के लिए ही इच्छा करते हैं, भगवान की सेवा के लिए। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। वैकुंठ लोक में जैसे कि हमने ब्रह्मा जी के वर्णन से सुना था, वहां चतुर्भुत विष्णु विराजमान है और उनकी सेवा करते हुए एक लक्ष्मी देवी है। हर एक वैकुंठ लोक के ऊपर एक विष्णु का रूप और एक लक्ष्मी देवी का रूप है, लेकिन गोलोक वृंदावन में जो अकेले श्री कृष्ण हैं, उनके साथ कितने लक्ष्मी देवियां हैं? सहस्र, सहस्र शत, हजारों हजारों हैं उनकी सेवा में आतुर रहती हैं। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, उनकी सेवा में हाजिर हैं। ऐसे श्री गोविंद के चरणों में मैं नमन करता हूं, ब्रह्मा जी ऐसे कहते हैं। हर रोज हम सुबह को 7:15 बजे भगवान कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन करते हैं। जिस रूप का वर्णन ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंध में किया वो चतुर्भुज रूप था भगवान का, लेकिन अब ब्रह्मा जी उस भगवान के द्विभुज रूप का वर्णन करेंगे जो कि गोलोक वृंदावन में पाए जाते हैं, श्याम सुंदर गोविंद श्री कृष्ण। ये श्लोक भी हम साथ में बोलते हैं।
वेणुं क्वणन्तम् अरविन्द दलायताक्षम् बढ़ावतां समसितां बुधसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि।
ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं उन गोविंद के चरणों में नमन करता हूं जो वेणु बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। वेणु क्वणंतम अरविंद दल आयत अक्षम, उनके आंखें खिले हुए कमल पुष्प के पत्रों के समान हैं, बहुत सुंदर कमल नेत्र हैं उनके, और वो बांसुरी बजा रहे हैं। बरह अवतमसम, बरह मतलब मोरपंख, तो अपने बालों में उन्होंने मोरपंख धारण किया हुआ है। असित अम्बुद सुंदरांगम, असित अम्बुद मतलब उनके शरीर की कांति एक ऐसे बादल की तरह है जो कि वर्षा के मौसम में पाई जाती है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम है श्याम सुंदर श्यामल। और अंग बहुत सुंदर है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, उनका सौंदर्य इतना है कोटि कोटि कामदेवों के तरह सुंदर है। यहां इस भौतिक जगत में कामदेव का बड़ा प्रभाव होता है, कामदेव बड़े शक्तिशाली है इस भौतिक जगत में, सबको वश में कर देते हैं, बच्चा हो बूढ़ा हो सभी को, और बहुत सुंदर कहे जाते हैं कामदेव। लेकिन ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण का सौंदर्य कोटि कोटि कंदर्पों की तरह है। फिर आगे भगवान के ब्रह्मा जी कहते हैं,
आलोल चंद्र कल सत्वन माल्य वंशी रत्नांगदं प्रणय केलि कला विलासम श्यामं त्रिभंग ललितं नियत प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि।
उनके वक्षस्थल में चंद्र का मतलब एक मणि है, मून लॉकेट, चांद की मणि, और वो हिल रही है उनके वक्षस्थल पे। वनमाल्य और वनमाला पहनी हुई है उन्होंने। भगवान के वनमाला का क्या नाम है? वैजयंती माला। वैजयंती माला विशेष माला है जो कि 5 तरह के फूलों से बनी हुई है, अलग अलग 5 तरह के रंग के फूल उनसे बनी हुई है, इसलिए श्री कृष्ण का और एक नाम है वनमाली। और आगे बताते हैं, वंशी धारण की वो हैं, वेणु बजा रहे हैं। प्रणय केली कला विलासम, हमेशा अपने भक्तों के साथ प्रेम विलास करते हैं। श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, श्यामम त्रिभंग ललित, त्रिभंग मतलब तीन जगह उनका शरीर बका हुआ है। कौन से तीन जगह में बता सकते हैं? एक है गर्दन, कमर और घुटनों में, तीन जगह उनका शरीर बका हुआ है। इसलिए श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, हमेशा भगवान इस रूप में, देखिए वहां चित्र है भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण का, आप देख रहे हैं वो त्रिभंग ललित, श्यामम त्रिभंग ललितम, उसी दृश्य में ब्रह्मा जी देख रहे हैं। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, इस तरह से ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं, भगवान के धाम को गोलोक वृंदावन को देख रहे हैं उनके आंखों के सामने। और इस प्रार्थना के आखिरी श्लोक पढ़ेंगे, क्योंकि भगवान का धाम का वर्णन भगवान के धाम की तरह अनंत है, लेकिन यहाँ काल का प्रभाव तो होता है, हालांकि वहां नहीं है और शायद अब सबको भूख भी लगी होगी, तो यह आखिरी श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। श्रियः कान्तः कान्तः परम, ठीक है,
श्रियः कान्तः कान्तः परम पुरुषः कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्ता मणि गणमयितोऽयममृतम् कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी चिदानन्दम ज्योतिः परमपि तदास्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिः स्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषार्धाख्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहम् इह गोलोकमितियम् विदन्तस्ते सन्तः क्षिति विरलचारः कतिपय।
इस स्थान को श्वेत द्वीप भी कहते हैं। भजे श्वेत द्वीपम तमहम इह गोलोकम इतियम, इस गोलोक को श्वेत द्वीप भी कहते हैं, जहां पर अनेक लक्ष्मियां श्रियः कान्तः कान्तः वो अपने प्रिय प्रभु भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रही हैं। कल्प तरवो द्रुमा, द्रुमा मतलब पेड़, हर एक पेड़ वहां कल्पतरु है। भूमिश्चिन्तामणि गणमयी, और वहां की भूमि कैसी है, वहां के रज का हर एक कण चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब एक ऐसा सुंदर मणि है, यहां पाया नहीं जाता, यहां चिंतामणि नहीं मिलता, केवल भगवान के धाम में। यहां अलग प्रकार का चिंतामणि है, क्या है पता है ना, मनी के बारे में चिंता करते रहते हैं लोग, चिंता मनी, पैसे के बारे में चिंता, यही चिंता मनी यहां पर है, लेकिन वो धाम में चिंता मणि है, इसलिए उसको चिंता मणि धाम कहते हैं। तो वहां पर हर एक रज का, रज जो कण है वो चिंता मणि है। तोयम अमृतम, तोयम मतलब पानी, वहां जल अमृत के बराबर है। यहां कभी कभी हम नगर पालिका के कृपा पर रहते हैं, जैसा पानी वो देंगे हमें पीना पड़ता है, या नल में या कुएं में जैसे पानी आता है, लेकिन वहां पर जल का हर एक बूंद अमृत है, साक्षात अमृत। कथा गानम, हर एक वचन हर एक शब्द मधुर सुंदर गीत के बराबर है। वहां कोई ऐसे रेलगाड़ी की आवाज, कोई मोटरगाड़ी की आवाज, किसी के झगड़ने की आवाज, कुत्ते के भौंकने की आवाज, जैसे यहां भौतिक जगत में सुनाई पड़ता है, वैसे कोई आवाज नहीं। हर एक शब्द हर एक वाणी, बोलने का तरीका भी इतना मधुर है, इतना मीठा है। अलग अलग तरह के लोग हैं यहां पर, जो जिनकी वाणी अलग अलग होती है। थोड़े लोग बड़े मधुर ढंग से बोलते हैं, थोड़े लोग स्वाभाविक तौर से कटु वचन बोलते हैं। अभी तक याद है स्कूल में हमारे एक अध्यापक हुआ करते थे, जो अगर कोई बच्चा बोलता था क्लास में तो उनको कहते थे, क्या मैं यहां घास काटने बैठा हूं, ध्यान से सुनो, तो हर छोटी बात पे ऐसे वचन बोलते थे कि सारे बच्चे बहुत घबरा जाते थे। तो मशहूर थे क्योंकि कभी भी दो मीठे शब्द नहीं बोलते थे, स्वभाव है। उसी तरह से और एक हमारे अध्यापक थे जो कभी भी गुस्सा नहीं होते थे, बड़े मीठे ढंग से सबको समझाते थे, बोलते थे। तो यहां पे अलग अलग प्रकृति के गुणों के संघ के हिसाब से थोड़े लोग मीठा बोलते हैं, थोड़े लोग कटु बोलते हैं, लेकिन भगवान के धाम में सभी लोगों की वाणी इतनी मीठी है, इतना मधुर है, वो एक सुंदर गीत की तरह लगता है। नाट्यम गमनम, गमनम मतलब चलना, जब वहां के निवासी चलते हैं तो एक सुंदर नृत्य के बराबर लगता है। वंशी प्रिया सखी, और भगवान श्री कृष्ण की वंशी बांसुरी वो सबके लिए बहुत प्रिय है। चिदानंदम ज्योति परम अपि तदास्वाद्यम अपि च, वहां जो प्रकाश है वो भी चिदानंद है, आनंद से भरा हुआ है। स यत्र क्षीराभि स्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान, सुरभि जो गाय है वहां पर समुद्र जैसे, समुद्र की मात्रा में दूध बहाती हैं आसानी से। निमेश अर्ध आख्य वा व्रजति नहीं यत्रापि समयः, जैसे हमने पहले ब्रह्मा जी के वर्णन से सुना था कि वहां काल का प्रभाव नहीं है, आधे क्षण के लिए भी, निमेश काल के लिए भी वहां काल का प्रभाव नहीं। भौतिक जगत में काल के प्रभाव से भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीन विभाजन होते हैं, लेकिन भगवान के धाम में ऐसे विभाजन नहीं है। सब कुछ बह रहा है, ऐसे नहीं लगता कि कुछ बीत गया। यहां काल के प्रभाव से हर एक व्यक्ति शोक करता है। जब व्यक्ति स्कूल में आता है तो शोक करता है, अरे मुझे पढ़ाई करना है, जब स्कूल में नहीं था अच्छा था, दिन भर खेलकूद करते रह सकते थे, लेकिन अभी पढ़ाई करना पड़ता है। और जब वो कॉलेज में आता है सोचता है स्कूल में ही अच्छा था, जब आगे जाता है सोचता है कि नहीं भाई अभी सब कमाना पड़ता है, परिवार का देखभाल करना पड़ता है, कॉलेज का जीवन कितना अच्छा था। फिर आदमी बूढ़ा हो जाता है, फिर शोक करते रहता है, हाय वो जवानी का समय कितना अच्छा था, हम इधर उधर घूमते थे, क्या नहीं करते थे, अभी हम बूढ़े हो गए, हम कुछ कर नहीं सकते। इसका मतलब काल का प्रभाव शोक है। काल के प्रभाव से हर एक व्यक्ति जो बीत चुका उसके बारे में चिंता करते रहता है। काल के प्रभाव से व्यक्ति जो अब है वर्तमान काल में उसके प्रति असंतुष्ट होता है, और काल के प्रभाव से व्यक्ति आगे जो आने वाला है उसके प्रति चिंतित रहता है। तो चाहे शोक या असंतुष्टि या चिंता, भूतकाल के बारे में, वर्तमान काल के बारे में, भविष्य काल के बारे में, ये काल का प्रभाव यहां भौतिक जगत में होता है, लेकिन भगवान के धाम में ऐसी चीजें नहीं है। ऐसे कभी नहीं लगता कि कोई चीज बीत गई है, कोई चीज खत्म हो गई है। जैसे कई कवि लिखते हैं बीते हुए जमाने के बारे में, कविता लिखते हैं ना, कितने अच्छे दिन वो गुजर गए, ऐसे हुआ, लेकिन वहां ऐसे कोई शोक की बात नहीं। ऐसे लगता है कि हर लीला, हर चीज हमेशा चलती है। यह है भगवान का धाम। लेकिन ऐसा धाम जहां काल का प्रभाव इस तरह से नहीं है, हम इसके बारे में चिंता नहीं कर सकते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी का वर्णन है उस धाम का, जहां कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं, कुछ नहीं, केवल आनंद ही आनंद है। सभी लोग ऐसा स्थान चाहते हैं। कौन व्यक्ति जगत में ऐसा है जो हमेशा हंसना नहीं चाहता, हंसमुख नहीं रहना चाहता, जो दुखों से मुक्त नहीं रहना चाहता, जो बीमार नहीं होना चाहता, जो मरना नहीं चाहता, जो बूढ़ा नहीं होना चाहता? कौन ऐसा व्यक्ति है? कितने कवियों ने कितने सारे कविता लिखे, संगीतकारों ने कितने सारे गाने लिखे कि काश मुझे ऐसा ही ऐसी अवस्था मिल जाती। मुझे याद है बचपन में हमने सुना था एक क्या है वो कविता या गाना कहिए, बचपन से याद था। हम इसलिए कहना चाहते हैं कि हम बताना चाहते हैं कि बाहर की दुनिया में भी लोग गोलोक को चाहते हैं, लेकिन अज्ञान की वजह से वो पहचान नहीं पाते हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। और वो गाना इस तरह से है, आ चल के तुझे मैं ले तो चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां क्या है वो, गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार फले। हम बचपन में सुना करते थे, बचपन से अभी याद है। जब हम भक्त बने फिर हमने सोचा कि अरे ये तो गोलोक वृंदावन की बात कर रहे हैं, ये तो वैकुंठ जगत की बात कर रहे हैं, ऐसे इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर क्या ऐसे हो सकता है? एक ऐसे गगन के तले जहां आंसू ना हो, जहां गम भी ना हो। यहां तो गम ही गम है, आंसू ही आंसू है यहां पर। इसका मतलब है कि ये कवि लोग भी भगवान के धाम का वर्णन कर रहे हैं, वो भी वहां जाना चाहते हैं, लेकिन जानकारी नहीं है उनको, ज्ञान नहीं है।